الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مدن وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम अपने हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुह की किताब मिसाली मर्द में से मिसाली बेटा का मौजू पढ़ रही हैं। मिसाली बेटा का मौजू जो है वो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि वालिदैन का एहतराम किया जाए गो वो काफिर हों। ठीक है, हमारा दीन ये सिखाता है कि हम वालिदैन का एहतराम करें अगरचे कि वो अल्लाह ताला के नाफरमान हों। अल्लाह ताला ही सिखाता है ना, दीन सिखाता है का क्या मतलब? दीन कोई फाइल तो नहीं है, दीन तो एक फेल है। इसका फाइल कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसने कि ये दीन बताया, दीन सिखाया अपने नबियों के वास्ते से। तो वो उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा है। वह बिलवालिदैन एहसाना, राइट, अपने कुरान मजीद के ज़्यादा जगहों पर, कि जो उसके नाफरमान हैं, जो कि उसका इनकार करते हैं, उसको उसके साथ शिर्क करते हैं, है ना। काफिर का मतलब क्या? उसके साथ शिर्क करते हैं, उसके नबियों का इनकार करते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है ना वो हुस्न सलूक का हुक्म देता है अपने उन बंदों को जो कि उसको मानते हैं, उसके नबियों की मानते हैं। कितना हलीम परवरदिगार है, कितना अजीम परवरदिगार है। तो काश कि हम उस परवरदिगार के इस नेमत का हम शुक्र करने वाले बन जाएं। अगला उनवान इस टॉपिक के अंदर हजरत ने फरमाया था, बेटा बाप का आईना होता है। तो कहते हैं कि बेटा अपने बाप पे जाता है, चुनाचे अरबी का एक मकूला है, अल वलदु सिर्रुन ले अभी ही, के बेटा अपने बाप का राज होता है। सिर जो है वो राज को कहते हैं, छुपी हुई चीज को कहते हैं। तो राज होता है मतलब बाप के अंदर की जो 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 क्वालिटीज होती हैं, या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, या उसकी जो सिफात होती हैं, वो बड़ा हो जाता है। बाप तो फिर बड़ा आदमी होता है ना, तो फिर वो उनको छुपाता फिरता है जो उसके अंदर बुराइयां होती हैं, ठीक है। वो उनको फिर दूसरों की नज़रों से छुपाने की कोशिश करता है, जो थोड़ा बहुत शरीफ बाप होता है, वरना जो शरीफ नहीं होते हैं वो तो फिर अपनी बुराइयों का इजहार करते हैं, वो तो दूसरों को अपनी बुराइयां दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो शरीफ होते हैं दुनियावी, जिनको लोगों का डर होता है, शरीफ की क्या डेफिनेशन होती है आमतौर पे हमारे मुआशरे में? शरीफ की क्या डेफिनेशन होती है? जो कि लोगों के सामने जो है ना वो अच्छे बन करके रहते हैं, ठीक है ना, लोगों के सामने, दुनिया के सामने अच्छे बन करके रहते हैं। तो वो फिर अपनी बुराइयों को छुपाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या निज़ाम है कि बाप के जो जीन्स है ना वो फिर बेटे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। और बेटा जो होता है ना वो तो बड़ा आदमी नहीं होता, उसको तभी इतना शऊर नहीं होता कि कैसे छुपाया जाए। तो उसकी जो अंदर उसके बाप से चीजें आई होती हैं ना, तो फिर वो लोगों के सामने जाहिर हो जाती हैं, वो लोगों के सामने जाहिर हो जाती हैं, ठीक है ना। ये आजिज आप में से कई को, आप में से एक से ज्यादा हजरात को बोल चुका है कि जब आपके बेटे साहब क्लास के अंदर हमारे सामने बैठे हुए होते हैं ना, तो हम उनको जो देख रहे होते हैं, तो हमें गोया के आप नजर आ रहे होते हैं उनके अंदर, राइट, हमें गोया के आप नजर आ रहे होते हैं आपके बेटे साहब के अंदर। जैसे आप हैं, आपके बेटे साहब भी वैसी हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छे हैं तो अच्छी हरकतें कर रहे होते हैं, और दूसरे किस्म के हैं तो फिर बेटे साहब जो है ना वो भी दूसरी किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। साफ नजर आ रहा होता है, साफ नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो भाई शरीफ हैं तो फिर दूसरों का ही ख्याल कर लेना चाहिए, मुआशरे का ही कम से कम ख्याल कर लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नहीं भी कर रहे तो जो सामने नजर आ रहा है, अल्लाह तो फिर नजर नहीं आ रहे ना, निगाहों से पोशीदा है, लेकिन जो नजर आ रहा है कम से कम उसका तो ख्याल कर लेना यार, ठीक है। तो उन्हीं उन्हीं के लिए अपने आप को तब्दील कर लें। बहरहाल अंग्रेजी का एक मकूला है कि द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, कि सेब दरख्त से बहुत दूर नहीं गिरता, यानी जो दरख्त का सेब होता है ना वो उस दरख्त के नीचे ही गिरता है ना, ठीक है ना। तो लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये इसी दरख्त का सेब है, ये इसी दरख्त का फल है, ठीक है। तो सेब गिरता है तो दरख्त के करीब ही गिरता है, इसका मतलब ये है कि बेटा अपने बाप के अखलाक के करीब ही होता है, ठीक है। इसीलिए जो नेक लोगों की औलादें होती हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह उन इस पर उनके साथ ज्यादा मेहरबानी, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह उस पर उनके साथ ज्यादा मेहरबानी फरमा देते हैं। जो नेक लोग होते हैं, नेक कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने शरीफ की तारीफ बताई। शरीफ कौन होता है? दुनिया वालों की खातिर अच्छा बनकर के रहने की कोशिश करता है। नेक कौन होता है? नेक वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अच्छा बनकर रहने की कोशिश करता है, यानी इसकी तन्हाइयां भी अच्छी होती हैं, इसकी तन्हाइयां भी अच्छी होती हैं, सिर्फ इसकी जलवत अच्छी नहीं होती, इसकी खलवत भी अच्छी होती है। ये इंसान नेक होता है, ये इंसान नेक होता है। तो हम अपने गिरेबान में झांक करके देख लें, क्या हम शरीफ हैं या हम नेक हैं? अगर आप शरीफ नहीं होते तो शायद इस क्लास में ना होते, ठीक है ना। तो इस क्लास में उम्मीद यही है कि सारे शुरफा मौजूद हैं, लेकिन क्या हम नेक भी हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपनी खलवतों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सही मानों में नेक होते हैं ना, जो कि अल्लाह का ख्याल करते हैं, अल्लाह से शर्म करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी लाज रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी लाज रखता है कि उनकी औलादों को भी जो है ना फिर कम मेहनत की वजह से के बावजूद अच्छा बना देता है, ताकि मेरे ये बंदे जो हैं वो रुसवा ना हो, ताकि मेरे ये बंदे जो हैं वो रुसवा ना हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों की फिर इज्जत रखते हैं जिन्होंने अल्लाह की इज्जत रखी होती है, जिन्होंने अल्लाह की इज्जत रखी होती है ना, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह उसकी इज्जत ना रखे? तो औलाद थोड़ी भी मेहनत करती है, अल्लाह ताला उनको बड़ा मुकाम अता फरमा देते हैं, ज्यादा मेहरबानी फरमा देते हैं। माँ बाप से बातचीत करें, आगे फरमाते हैं कि माँ बाप के पास जब बैठें तो अपने बचपन के कुछ वाकयात सुनाएं, इसलिए कि जब आप अपने बचपन के कुछ वाकयात सुनाएंगे तो माँ बाप आपके साथ गुफ्तगू में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और उससे उनको ये पैगाम मिलेगा कि आप उनके बचपन के एहसानात को भूले नहीं हैं बल्कि अभी भी याद रखे हुए हैं। तो बचपन की बातें माँ बाप को सुनाना कि आपने इस तरह मुझे चीज लेकर के दी थी, आपने इस तरह ये काम किया था, इससे माँ बाप को ये पैगाम मिलता है कि हमने बचपन में जो उनकी परवरिश की थी ये उसको भूले नहीं हैं, बल्कि हमारे बुढ़ापे में भी उन्होंने उसको याद रखा हुआ है। इसी तरह अगर माँ बाप दूसरे शहर या मुल्क में रहते हों तो उनको अक्सर व बेशतर कॉल करनी चाहिए और उनको अपनी खैरियत के बारे में मुतला रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटे की बात हो रही है, मिसाली बेटा, ठीक है ना, मिसाली बेटी तो अभी हमने शायद पढ़ा ही नहीं है, बेटी की बात नहीं हो रही। बेटियां आजकल माँ को कॉल करती हैं ना तो उल्टा ही हो जाता है फिर उसके बाद। अल्लाह में अक्ल सलीम अता फरमाए, अपने खौल में से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे की बात हो रही है, बेटे के ऊपर सबसे ज्यादा हक जो होता है वो उसकी माँ का होता है, बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? क्विज, लेट अस हैव अ क्विज, बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? हाथ उठाएं भाई। जी हेलो, शौहर का, माँ का हक नहीं होता, बाप का हक नहीं होता, किसका हक होता है? उसके शौहर का हक होता है, राइट। और बेटे के ऊपर किसका हक होता है? माँ का हक होता है, बीवी का हक नहीं होता सबसे ज्यादा, ना बाप का हक सबसे ज्यादा होता है,
है ना।
वी हैव आवर डेफिनेशंस मेस्ड अप, वी हैव आवर डेफिनेशंस मेस्ड अप बिग टाइम एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट एंड वी आर जस्ट फेलिंग टू एडमिट दैट। यानी कौन सी दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं और समझते हैं कि सारी दुनिया हमारी दुनिया में जिंदगी गुजार रही होती है। तो माँ बाप से बातचीत करें तो भाई अगर बाप साहब ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में बेटे के साथ ऐसा कुछ किया होगा तो फिर उसको याद रहेगा ना कि हाँ अब्बू आपने मेरे साथ ऐसे किया था, अब्बू आपने मेरे साथ ऐसे किया था, ठीक है ना। लेकिन अगर अब्बा हो बराक ओबामा के अब्बा, बराक ओबामा को तो सब जानते होंगे ना भाई, ठीक है ना, अगर बराक ओबामा के अब्बा टाइप के अब्बा होए तो फिर कौन सी चीज याद आएगी, कुछ होगा तो याद आएगा ना, राइट। तो ऐसे बेटे जिनके बाप जो थे वो उनको अपनी जिंदगी में ही यतीम करके चले गए, जिंदगी में ही यतीम करके चले गए, तो उनका बेटा फिर किस चीज को याद रखेगा, है भाई क्या फरमा रहे हैं। मिसाली बेटा चल रहा है, अपने बड़े बेटे को भी ये सुना सकते हैं स्पीकर ऑन करके, हाँ, ताकि अपना काम ना करना पड़े, अपना काम आसान हो जाए। नहीं, आप इसको अपने अब्बा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, वालदैन वो पहले ही आप खैर रहने दें, आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज में बोलते तो फिर आपको अच्छी तरह से सुनाते हैं। चले, वालदैन के हाथों को बोसा दें। एक रिसर्च ये भी है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं और बच्चे उनको मिलने आएं तो बच्चे सिर्फ उनको जुबानी सलाम ना करें बल्कि उनको गले मिलें, ठीक है ना। ये पुरानी वाली हमारे बचपन जो है ना बेटों को थामने लेकर के आते हैं नसीहत करने के लिए, दूसरा बंदा उसको नसीहत कर दे। चले, एक रिसर्च ये भी है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं बच्चे उनको मिलने आएं तो बच्चे सिर्फ उनको जुबानी सलाम ना करें बल्कि उनको गले मिलें और उनके हाथों को चूमें। गले मिलने और हाथों को चूमने से उनके दिमाग में ऐसे हॉर्मोन्स पैदा होते हैं कि जिससे उनको अपनाइयत का एहसास होता है और उनके सेहत पे उसका अच्छा असर पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों को प्यार करने और गले लगाने का असर होता है, इसी तरह बूढ़ों पर भी उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। लिहाजा सिर्फ जुबान से ही सलाम करने को काफी ना समझे, बल्कि अगर वालिद को सलाम किया है तो उनको गले भी मिले और उनके हाथों को बोसा भी दे। ये मोहब्बत प्यार उनके जिस्म की गोया जरूरत बन जाती है, ठीक है। तो जी भर करके अपने वालदैन के साथ जो है वो ऐसा मामला करें। मोहब्बत की 5 जुबानें, आगे एक रिसर्च है, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव फॉर पेरेंट्स। 5 जुबानें ऐसी हैं जो मोहब्बत की जुबानें कहलाती हैं और माँ बाप पे उनका बहुत अच्छा असर पड़ता है। पहली बात के वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, मोहब्बत से भरे अल्फाज, यानी माँ बाप को कहना कि अब्बू अम्मी आई लव यू, ठीक है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, सही है। तो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन के अफर्म करना कि हाँ भाई वाकई मैं, यानी जिसको कहते हैं ना कि मोहब्बत इजहार चाहती है, जिसका कि वाकया अभी पीछे यानी इसी बयान में या किसी और बयान में हजरत ने फरमाया था ना कि वो मोहम्मद सरमद साहब जो है वो आए तो हजरत ने जो है वो ज्यादा उनको गले वले नहीं लगाया तो वो जाकर रोना शुरू हो गया, तो वापस आकर के फिर पता चला कि अच्छा आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो मोहब्बत इजहार चाहती है, ये वाली बात दोबारा रिपीट कर दी। दूसरा, दूसरी यानी लैंग्वेज ऑफ लव, ठीक है, या दूसरा फ्रेज और स्टेटमेंट ऑफ लव, तो फरमाते हैं कि दूसरी बात यह है कि अगर माँ बाप के साथ आप बुरा रवैया रखें तो इससे उनको बहुत तकलीफ होती है, उनका दिल बहुत दुखता है। अगर बच्चे उनको तिरछी और गुस्से की निगाहों से देखें या गुस्से के अंदाज में पूछें कि क्या मसला है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, तो जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं ये अंदाज माँ बाप के दिल को ज्यादा दुखी करता है। इसीलिए हमेशा उनके साथ बात करते हुए नरमी और मोहब्बत के साथ बात करें ताकि उनको ये पैगाम मिले कि मेरा बेटा हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है। नरमी, वक्फ जनाह, क्या है कुरान मजीद की वो आयत, अपने कंधों को उनके सामने झुका करके रखो, ठीक है ना, अकड़ करके उनके सामने ना रखो। और इसी तरह से यानी जुबान तो सबसे खतरनाक चीज होती है, कंधे को अकड़ना जो है ये जुबान से कम दर्जे की चीज है, अल्लाह ताला ने कम दर्जे की चीज को भी फरमाया कि इसको भी झुका करके रखो, ठीक है। तो अगर हेयरिंग एड का मसला है और जोर से बोलना पड़ रहा है तो बस उसी मकसद से जो है वो जोर से बोल सकते हैं, वरना यानी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हरगिज हरगिज जोर से नहीं बात कर सकते माँ बाप के सामने। और इस किस्म के जुमले कसना या इस किस्म के अल्फाज जो कि टीजिंग किस्म के अल्फाज होते हैं ना, इसकी तो हरगिज हरगिज कोई गुंजाइश नहीं है। फिर एक तीसरी चीज के माँ बाप से हमेशा बात करते हुए उनसे आई कॉन्टैक्ट यानी नजरें मिला के रख के आई कॉन्टैक्ट रख के बात करें। नौजवान कई मरतबा इसमें भी कोताही करते हैं, बाप से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हों। यहाँ पे आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि दीदे फाड़ फाड़ के देखना या आंखों में आंखें डाल के देखना, ये उर्दू के मुहावरे, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉनोटेशन के साथ है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग के साथ। तो या तो अदब के साथ नजर झुका करके, माशाल्लाह इतने अदब वाले हैं कि बाप के सामने जो है वो निगाहें उठती नहीं है बल्कि सर झुका करके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उसको खत्म नहीं करने की जरूरत है इस नसीहत को सुन करके, बल्कि मकसद ये है कि जैसे कि यानी बिल्कुल तवज्जो नहीं है, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर कुछ कार्य कर रहे हैं और जो है ना वो बस बगैर देखे बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी छोटे बच्चे से कभी कोई बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करने से मना फरमा रहे हैं, ठीक है। तो आई कांटेक्ट की बात हो रही है, नॉट लुकिंग स्ट्रेट इन द आईज वाला कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। बाप को इंसान ही ना समझा। तो हमारे यहाँ मशहूर है कि चंद लोग बैठे बात कर रहे थे, तो एक नौजवान जो बातों में काफी दिलचस्पी ले रहा था, उसके वालिद भी आ गए। जब उसके वालिद आए तो उन्होंने भी बात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब उन्हें बात करता देखकर बेटा फौरन बोला, अब्बू आप खामोश रहें, इंसानों को बात करने दें। यानी बाप की कदर करना तो दूर की बात, उसने तो उन्हें इंसान भी ना समझा और कहने लगा कि लोगों को बात करने दें, ठीक है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको बात करने दें। इस किस्म की हरकतें करने से माँ बाप का दिल दुखता है। उनके साथ आई कांटेक्ट नजरें मिलाकर बात करना यानी रखना चाहिए। जब आप आई कांटेक्ट रख के बात करेंगे तो अपनी अपनाई तो उन्हें अपनाइयत का एहसास होगा, यानी बेतवज्जुही के साथ बात ना करें तो इससे अपनाइयत का एहसास होगा। खास तौर पर माँ बाप से बात करते हुए मोहब्बत प्यार से बात करें, ठीक है जी। तो वो तीसरा पॉइंट था एक्चुअली जो भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है कि फिर एक बात ये भी जहन में रखें कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि अल्फाज के बजाय अमल ऊंचा बोलते हैं, अल्फाज के बजाय अमल ऊंचा बोलते हैं। तो अपने अमलों से माँ बाप को साबित करें कि आप उनका ख्याल रखते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो है वो यानी अल्फाज इस्तेमाल करना और जो एक्शन जो है वो बिल्कुल उसके खिलाफ करना, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो हमने कल्चर अपनाया हुआ है कि मदर्स डे एंड फादर्स डे, ठीक है ना, ये भी इसी कबील की हरकत है, इसी कबील की हरकत है, इसी तो नौयत की हरकत है कि जी बस साल में एक दिन या कोई और, आप मदर्स डे को जो है वो अगर मंथली सेलिब्रेट करना शुरू कर दें तो मंथ के अंदर एक दिन, राइट, आपने जो है वो अब्बा को वो गिफ्ट ला करके दे दिए या अब्बे के साथ जो है वो कोई अच्छे प्यार भरे बातें कर ली और बाकी टाइम जो है ना वो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं या उनको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं या जो है वो और इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो ये गोया के मदर्स डे या फादर्स डे सेलिब्रेट करना भी ना, दीज आर जस्ट वर्ड्स, ठीक है ना, दे आर नॉट एक्शन। एक्शंस ये नहीं होते कि साल में एक दफा मना लिया या उस तरह से, कभी कभी बस जुबानी कलामी कुछ इस किस्म की हरकत कर दी। तो पांचवा पॉइंट, बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत में जो सुस्ती दिखाता है तो उस सुस्ती को माँ बाप मोहब्बत की कमी समझते हैं। नौजवान हालांकि सुस्ती की वजह से कोताही कर रहा होता है मगर माँ बाप उसको सुस्ती नहीं समझते बल्कि वो उसको मोहब्बत की कमी समझते हैं कि हमारे बच्चे को हमसे मोहब्बत ही नहीं है, इसलिए उसको हमारे कामों में दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा कभी भी माँ बाप के मामले में सुस्ती ना करें, ठीक है। यानी जो माँ बाप के तकाजे हैं, माँ बाप की जो नीड्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो सुस्ती काहिरी ना करें, ठीक है। ये सुस्ती करना किसी के तकाजे को पूरा करने में, ठीक है ना, ये मैं असल में किसी और पॉइंट की तरफ इसको ले जाना चाह रहा हूँ, इस वजह से खास तौर पर ये तकाजे का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। किसी के तकाजे को पूरा करने में जब कोई सुस्ती दिखाते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप की कमजोरी की अलामत होती है। ठीक है, तो देखें जिस तरह से इंसानी माँ बाप जो है ना इंसान, ठीक है, इन्होंने आपके लिए हमारे लिए जो है वो चंद चीजें मुहैया करी होती हैं, खाना पीना लिबास तालीम घर गाड़ी वगैरह। ठीक है, तो इनकी भी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जब मेरा कोई तकाजा है, जब मेरी कोई नीड है, तो उसको फुलफिल करने में जो है वो सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। तो परवरदिगार ने तो सब कुछ हमें दिया, जो कुछ हमारे पास है, रत्ती रत्ती भी जो है ना, यानी एक एक रग रग रेशा रेशा हमारा जो है वो हमारे परवरदिगार के एहसानात में दबा हुआ है। तो जब परवरदिगार का तकाजा, परवरदिगार का क्या तकाजा है, परवरदिगार के तकाजा जो है ना वो उनको फराइज कहते हैं। परवरदिगार के तकाजों को फराइज कहा जाता है। फराइज में सुस्ती, ये जो है ना मोहब्बत में यानी शदीद कमी की अलामत होती है, कमी की यानी मेजर कमी की अलामत होती है परवरदिगार के साथ। ठीक है, फिर नवाफिल के अंदर सुस्ती जो है, ये समझ लें कि यानी जो बुनियादी मोहब्बत परवरदिगार के साथ होनी चाहिए ना, वो तो है क्योंकि फराइज तो ये कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन नवाफिल के अंदर अगर सुस्ती दिखा रहा है तो फिर इसमें कहा जाएगा कि मोहब्बत की शिद्दत में कमी है, गर्मी में कमी है, थोड़ी सी ठंड पड़ी हुई है इसकी मोहब्बत के अंदर। ठीक है, लेकिन बेर मिनिमम मोहब्बत मौजूद है, जब ही तो फराइज कर रहा है। ठीक है, तो मोहब्बत जो है ना फिर इस तरह से प्ले करती है किसी के साथ जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसके अंदर। आगे फरमाते हैं कि लिहाजा कभी भी माँ बाप के मुआमले में सुस्ती ना करें, इसी तरह अगर माँ बाप को कभी उठाने या बिठाने का मौका मिले तो उनके साथ सख्ती ना करें, यानी ऐसा नहीं कि बस जोर लगा के उठा दिया और बिठा दिया, इससे उनको उल्टा तकलीफ पहुंचती है, लिहाजा आराम और सुकून के साथ बहुत नरमी से उनकी मदद करें। ठीक है, तो अभी क्योंकि इस आज इसका आपने लोगों में से अक्सर को पता ही है कि मेरे जो बहुत ही ज़यीफ़ वालिद साहब हैं वो साथ रहते हैं, और उनको जो है वो चूंकि उनको पैरालिसिस का अटैक जो है वो आज से तकरीबन 10 साल 9 साल तो गुजर चुके हैं, 10वां साल चल रहा है, तो 10 साल से उनका ये मामला है, तो इस वजह से ना ये यानी डेली मामला है, और दिन में कई कई मरतबा इस तरह से करना होता है, उठाना बिठाना। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है वो इट कैन गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो सकती है, और यकीन करें कि ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिसके अंदर अगर अल्लाह का खौफ ना होना और अल्लाह ताला का ख्याल और ध्यान ना होना तो इंसान से सब्र नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक चीज होती है भाई, यानी वजन है ज्यादा और आप उठा ही नहीं पा रहे हैं, आपकी अपनी जो है वो पावर जो है वो खत्म हो गई है, तो वो आपको जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो आपको जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यू नो दिस इज यू कैंट यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है ना, तो उस वजह से कभी खींचना पड़ता है क्योंकि उसके बगैर वो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा उनको। ठीक है, लेकिन एक होता है कि यानी बार 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 और फिर इस किस्म की सिचुएशन यानी जो कि उनके यानी गलती की वजह से क्रिएट हो रही है, देन इट्स बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो बस दिल से अपने मशाइख के लिए दुआ निकलती है कि उन्होंने अल्लाह ताला का डर दिखाया, अल्लाह ताला के बारे में बताया समझाया, तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा, वरना तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है ना वो अपने हाथों से कर लिए होते हैं अपने खिलाफ। ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी। बहरहाल अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है और उससे कभी भी जो है ना गलती हो सकती है, कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते कि नहीं जी मैंने तो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर दिया है, नाउ आई एम सेफ। नहीं, सेफ्टी तो यूसुफ अलैहि सलाम के वाकये में पढ़ रहे हैं ना, यूसुफ अलैहि सलाम अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे थे, तो हम किस खेत की गाजर मूली हैं। तो अगला टॉपिक पर पढ़ लेते हैं कि माँ हुस्न सुलूक की सबसे ज्यादा हकदार। बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स स्पेशली टू योर मदर, के माँ बाप का और खास तौर पर अपनी वालिदा का बहुत ज्यादा इकराम करें। इकराम करें का मतलब जो है मतलब बीइंग ग्रेटफुल, इकराम सॉर्ट ऑफ यानी एक ही मीनिंग्स रख सकते हैं। तो एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसके साथ भलाई और नेक सुलूक करूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। मैंने अर्ज किया कि फिर किसके साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। मैंने फिर अर्ज किया कि फिर किसके साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाप के साथ। तो वालिदा का 3 मरतबा तस्करा फरमाया, इसका मतलब यह है कि वालिदा हमारे हुस्न सुलूक की ज्यादा मुस्तहिक होती हैं। अगर कोई नौजवान देखे कि उसके माँ बाप गुलाम हैं तो वो उनको खरीदे और खरीदने के बाद आजाद कर दे, तब भी वो माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। ठीक है ना, हम तो इस चीज से वाकिफ ही नहीं है ना, इस वजह से हम ज्यादा रिलेट नहीं कर पा सकते कि भाई ये कौन सी बड़ी बात हो गई है, माँ बाप को खरीद करके जो है वो आपने आजाद कर दिया। ठीक है ना, लेकिन जिस जमाने में ये गुलामी वाला सीन चल रहा होता था ना, तो उस जमाने में इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो यानी समझी जा सकती थी, फील करी जा सकती थी। इसी वजह से जो बड़े बड़े गुनाह शरीयत के अंदर है ना, तो उनका जो पहला कफारा होता था वो गुलाम आजाद करना। ठीक है ना, और फिर उसके बाद, अच्छा हम इससे रिलेट कर सकते हैं, 60 रोजे लगातार रखना, 60 रोजे लगातार रखना जो है वो कितनी मुश्किल चीज है, तस्वुर करें। राइट, 60 मिसकिनों को खाना खिलाना उसके बाद आता है, और गुलाम आजाद करना जो है वो 60 रोजे से पहले आता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंटेंस है, सबसे ज्यादा जो है वो शदीद है? वो गुलाम आजाद करना है। ठीक है ना, हम तो उसे रिलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दौर में तो गुलाम होते ही नहीं है, जिहाद व्याद तो खत्म हो गया ना, हमने खत्म कर दिया, तो इस वजह से कहाँ से गुलाम आएंगे। बहरहाल, तो हम जो है वो 60 रोजे से समझ सकते हैं कि कितना बड़ी बात थी ये। तो अगर उसने गुलाम थे आजाद खरीद करके आजाद कर दिया ना, तो फिर भी उसने कोई हक अदा नहीं किया। तो हक अदा करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को बिल्कुल बैरी कर देना चाहिए कि गोया के मतलब वो हमने बड़ा एहसान किया और उनका हक अदा हो गया। यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन लुक देयर कि हक अदा करने वाला वाला जो जो मामला होता है ना, यही आप बस अल्लाह का हुक्म है भाई, और उनकी मोहब्बत है, उनका एहसान है कि आप ये काम कर रहे हैं। हक वक्त तो छोड़ दें, डोंट यानी सोचे ही नहीं इसके बारे में। ये तो सहाबी थे जो कि दीन सीख रहे थे ना, इन्हों के लिए तो ये सारी चीजें बिल्कुल नई थी, तो इस वजह से सहाबत जो है उस किस्म के सवाल किया कर, तो जैसे कि अगला सवाल है, हमारे लिए चीजें नई कोई थोड़ी है, हम तो 1400 साल पुराने यानी दीनदार हैं। ये दीन दीन हाँ, यानी हमारे पास तो 1400 साल रह करके दीन इस दुनिया के अंदर पहुंचा है ना, हमारे पास पहुंचा है। इस वजह से हम इस किस्म के सवाल करने की हमें दुख नहीं बनती। हाँ, अगर बिल्कुल ही आप कोरे हैं, बिल्कुल जीरो हैं, कुछ भी आपको नहीं पता, तो फिर आप जो है मुतालिब इल्माना तौर पर सवाल कर सकते हैं, वरना तो हमें तो ये चीज बल्कि ज्यादा ही पढ़ाई जा रही होती है। एनीवे, तो 3 मरतबा वालिदा का तस्करा करने का मतलब फिर कुछ लोगों ने ये बना लिया कि अब बाप को जो है ना वो तो क्या कहते हैं, खड्डे से लगाओ। ठीक है ना, और अम्मा अम्मा ही अम्मा, वो चंदा मामू वाला कॉन्सेप्ट कि अम्मा तो अम्मा, अम्मा के भाई भी चंदा। ठीक है ना, बाप के भाई जो है वो चंदा नहीं बन सकते, चंदा के मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते कभी। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पहुंचेंगे भी तो चाचू के मकाम तक पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा प्यार है, लेकिन चंदा के मकाम तक नहीं पहुंच सकते अब्बा के भाई। ठीक है ना, अब वो तो अम्मा के ही भाई पहुंच सकते हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो है ना वो माँ ही माँ है और बाप तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। ठीक है ना, वो यानी फिर वो पूरा आपका जो पिछले 200 साल की गुलामी है, और उस गुलामी के अंदर जो आपके जहन बनाया गया है गोरे साहब ने, वहां से अपना कल्चर ला करके जो आपके ऊपर इन्फोर्स किया है, तो उसके अंदर जो है ना वो खातून साहिबा को उठाना, खातून को उठाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। ठीक है ना, और दूसरा क्या, इनके ऊपर जो है वो तुम्हारा यानी क्या है वो अलैहिन्न दरजा। ठीक है, बोले रिजाल अलैहिन्न दरजा है कि वो एक दरजा ऊपर बनाया है। ठीक है ना, और वो दरजा ऊपर बनाने का मतलब ढोस धमकी वाला नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी वाला था और इज्जत वाला था। अल्लाह ताला ने इज्जत मकाम रिस्पेक्ट ये शौहर को दिया, ये मर्द को दिया। ठीक है ना, और फिर जिम्मेदार भी बनाया साथ साथ। ठीक है, और फिर जवाबदेह भी बनाया साथ साथ। लेकिन जाहिर है जो शैतान का कल्चर होता है, दज्जाली कल्चर जो होता है, और याजूज माजूज वाले जो कल्चर होगा, तो वो तो उसको रिवर्स करेगा ना। तो चूंकि उन्होंने हमारे ऊपर फिजिकल जब कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी जहन साजी के ऊपर मेहनत करनी शुरू करी, तो उन्होंने जो है वो इस तरतीब को उल्टा ही करना था। तो तरतीब उल्टी हुई, मर्द साहब जो है ना वो अपनी हरकतों की वजह से, जाहिर है मर्दों की अपनी ही हरकतें थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी है कि उनको नीचे कर दिया गया है, वो अल्लाह की बांध के चले तो फिर अल्लाह ताला उनको ऊपर उठा देंगे। बहरहाल लेकिन द एंड रिजल्ट इज के तरतीब उलट गई है, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो ननियाल इज एवरीथिंग, ददियाल इज नथिंग, ठीक है ना, और जो है वो अम्मा इज एवरीथिंग एंड फादर इज नथिंग, ठीक है। तो इस किस्म की जो सिचुएशन हुई है तो फिर उसमें ना फिर लोगों ने इस हदीस को बड़ा इस्तेमाल किया, वलिर्रिजाले अलैहिन्न दरजा जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है ना। तो फिर इस हदीस को खूब इस्तेमाल किया कि भाई देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही फरमाया है, माँ के जो है वो तीन दर्जे हुकूक हैं और बाप के जो है वो उसके बाद नंबर आता है, तो बाप को खड्डे से लगाओ, इसका मतलब ये है कि ऐसी की तैसी अब्बा हुजूर की, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि माँ जो होती है वो कमजोर होती है, वो सिन्फ नाजुक होती है। अगरचे के गोरे साहब ने आकर के उसको सिन्फ आहन बना दिया है, या सिन्फ आहन का लिबादा ओढ़ दिया है और टाइटल लगा दिया, कोई सिन्फ नाजुक को सिन्फ आहन बना नहीं दिया है उसने, वो तो है अभी तक सिन्फ नाजुक, बेचारी अपने दिमाग में अपने आप को सिन्फ आहन समझ रही होती है, ठीक है ना। और इस वजह से वो एक्ट भी इसी तरीके से करने की कोशिश कर रही होती है जैसे कि वो वाकई सिन्फ आहन बन चुकी है, ठीक है ना। बेवकूफ कोई बन जाए तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है ना, और क्या करेगा फिर वो बेचारा। और ये तो है भी माशाल्लाह खातून, ठीक है, तो वो है सिन्फ नाजुक ही, उसका उसका अल्लाह ताला ने साख ही कमजोर बनाई है, उसकी अल्लाह ताला ने जज्बात ही कमजोर बनाए हैं, उसकी अल्लाह ताला ने अकल ही कमजोर बनाई है, ठीक है ना। अब आपको आपसे मुझे वोट्स वोट्स नहीं, कल इलेक्शन में आप जाके किसी और को वोट डालिएगा, मुझे आपसे वोट नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से यू नो व्हाट आई फील इज राइट इज राइट, मैं उन्हें मैंने वही बताया है ना जो भाई भाई मेरे समझ में आया है बात, आपको नहीं समझ में आता तो आप ना सुने बात, ठीक है। तो भाई नबी अलैहिस्सलाम ने उसको नाकसुल अकल फरमाया, मैंने तो नहीं कहा नाकसुल अकल, है ना। अब आप किसी और से जाकर के शिकायत करें क्यों फरमाया, मुझसे क्यों शिकायत करते हैं, ठीक है। तो उसको जो है ना फिर उठा करके जो है वो सर पे चढ़ा दिया, अब जो है ना वो हदीस मुबारक को फिर यूज नहीं करते, अब्यूज करते हैं अपनी इस बदबख्ती को प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करते हैं यानी यूज क्या करते हैं, हदीस मुबारक को यूज करते हैं फिर, ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं, बाप का अपना मुकाम है, माँ का अपना मुकाम है, हाँ वो कमजोर होती है इस वजह से उसके साथ जो है वो ज्यादा हुस्ने सुलूक की जरूरत पड़ती है, राइट। और बाप जो है ना वो सपोजिडली रिजाल होता है, सपोजिडली रिजाल, वरना आजकल रिजाल कहाँ मिलते हैं, जकर ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो रिजाल होता है तो रिजाल कैन हैंडल इट, राइट, इमोशनली ही कैन हैंडल इट, फिजिकली ही कैन हैंडल इट, बात समझ में आ रही है। माँ कैन नॉट हैंडल इट इमोशनली नॉर फिजिकली, शी नीड्स मोर हेल्प, शी नीड्स मोर सपोर्ट, ठीक है, बस इतनी सी बात है। कोई सवाल भी तो पूछ लिया कि भाई बात ही समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई, ठीक है। तो शायद एक दर्द का बदला चुका दिया हो। तो फरमाते हैं कि चुनाचे एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्ह ने अपनी वालदा को हज करवाया, उस जमाने में मुताफ के अंदर कोई ऐसा खास मार्बल नहीं था जो, बल्कि बहुत गर्म होने वाला मार्बल था, ये हजरत ने मेरे ख्याल में थोड़ा लतीफ अंदाज में कह दिया होगा, मार्बल तो उस जमाने में था ही नहीं, ठीक है ना, मार्बल तो अभी लगा वो भी, उसकी लंबी चौड़ी स्टोरी है इस मार्बल की भी कि कहाँ से वो मार्बल माइन जो है वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर डिस्कवर हुई, और फिर जो है ना वो वहां से मार्बल, वहां के जो खान साहब थे उस माइन के, तो उन्होंने जो है वो सारा मार्बल जो है ना वो हरम के लिए दिया, और फिर भी जो है वो इतना बचा कि महद की मस्जिद के अंदर भी वो पूरा का पूरा मार्बल लगा हुआ है। इस मार्बल की खासियत क्या है कि ये धूप के अंदर गर्म नहीं होता बल्कि ठंडा रहता है, ठीक है। अच्छा, जब हरम के अंदर मार्बल लग गया तो उसके बाद जो है ना वो कबायली जंग शुरू हो गई और वो पूरी की पूरी कान जो है वो बंद हो गई, ठीक है, और वो पता नहीं कितना अरसा फिर बंद रही। जब वो खुली है तो वो उस वक्त खुली है जबकि हमारे हजरत की मस्जिद के अंदर मार्बल चाहिए था, उस वक्त वो खुली और फिर उन्होंने मस्जिद के लिए सारा का सारा मार्बल दे दिया अपने अपने कान का। बहरहाल तो हजरत ने फरमाया कि मुताफ के अंदर ऐसा कोई खास मार्बल नहीं था बल्कि बहुत गर्म होने वाला मार्बल था, और उनके पास जूते भी नहीं थे। तो फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा को अपनी कमर के ऊपर उठाया और उस इस हाल में तवाफ किया कि मेरे पांव जल रहे थे, हत्ता कि इतना जलने की कैफियत हुई कि छाले पड़ गए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को इस तरह हज करवाया है और तवाफ ऐसे करवाया कि मेरे पांव जल रहे थे, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब तुम वालदा के पेट में थे और तुम्हारी विलादत होने का वक्त करीब था, तो उस वक्त तुम्हारी वालदा को जो दर्द महसूस हुई थी, जिसको दर्द जह कहते हैं, तो जो एक मर्तबा कोई दर्द उठी थी, हो सकता है कि उस एक दर्द का बदला तुमने चुका दिया हो। ठीक है, तो कितना बड़ा तीर मारा है उन्होंने, है कि उस एक दर्द जह का जो है वो बदला शायद चुका दिया हो। तो इसी वजह से देखें ही नहीं इस तरफ, बदला बदला चुकाने को तो फॉरगेट अबाउट, भूल जाए इस वाले कॉन्सेप्ट को, बदला उतारने वाले को। ठीक है, बस जो हमने करना है वो हमने अपनी जिम्मेदारी समझ करके और मोहब्बत की वजह से और अल्लाह का हुक्म समझ करके हमने ये करना है। ठीक है, सब्र का मुजाहरा करें। कई हजार बूढ़े लोगों से इंटरव्यू किया गया कि आप अपने बच्चों के अंदर क्या चीज देखना चाहते हैं। सबका एक ही जवाब था कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर सब्र ज्यादा होना चाहिए। नौजवान जल्दबाजी करते हैं, बात नहीं सुनते, आधी सुनी और जवाब दे दिया, जबकि वालदैन चाहते हैं कि बच्चे सब्र के साथ बात को सुने और फिर इसके बाद जवाब दें। ठीक है, तो चाहते तो हैं कि सब्र हमारे बच्चों के अंदर हो, लेकिन सबर तो सही मानों में जो सबर होता है, तो ये तो भाई सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी जो 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 क्या कहते हैं, एक इंसान के अंदर क्वालिटी है ना, वो है सबर की क्वालिटी। तो ये ऐसे फ्री में तो नहीं मिल जाता, राइट? या ये कि ऐसी बस ख्वाहिश करने से तो नहीं सबर मिल जाता ना, कि हम चाहते हैं कि उनके अंदर सबर हो। तो भाई इतनी बड़ी चीज है, तो फिर उसके लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। ठीक है, तो जिन्होंने किया होता है, तो फिर उनके औलादों के अंदर सब्र भी आ जाता है। अल्लाह ताला दे देते हैं, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है सब्र की तौफीक मिल जाना। तो अल्लाह ताला फिर मेहनत का अजर दे देते हैं, और फिर जाहिर है फिर वो सब्र जो है फिर हर जगह फिर उसका इजहार होता है, वालिदैन के साथ भी फिर उसका इजहार होता है और दूसरी जगहों पर भी उसका इजहार हो रहा होता है, यानी वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ रहे होते हैं। इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, राइट? कि सिवाय इसके नहीं कि जो सबर करने वाले होते हैं ना, उसको उनको बिला हिसाब अजर मिलता है। तो कितनी बड़ी ये, यानी अखलाक हमीदा में से कितना बड़ा ये खुलक है सबर का। फिर उसके बाद वालिदैन की खिदमत पर मिलने वाला अजर, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि उनके गुनाहों के कफारे के लिए एक गाय को ज़बह किया जाए। उस गाय का रंग भी बताया गया और उम्र भी बताई गई। गाय ढूंढने के लिए जब लोग निकले, तो वो गाय उन्हें एक बंदे के पास से मिली, मगर उसने बहुत ज्यादा कीमत मांगी। अब चूंकि उन्होंने उसको ज़बह करना ही था, लिहाजा मुंह मांगी कीमत देकर उसको हासिल किया। तफसीर बगवी से इसको नकल किया है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि इतनी महंगी गाय खरीदने की वजह यह थी कि जिस नौजवान के पास वो गाय थी, वो अपने माँ बाप का बड़ा इकराम किया करता था। माँ बाप के इकराम की वजह से अल्लाह ने उस शख्स की गाय को ज़बह करने के लिए मुतअय्यन फरमाया, ताकि बच्चे को अपने माँ बाप के इकराम की वजह से मुंह मांगी कीमत मिल जाए और उसको रिस्क के तौर पर आसानी हो जाए। तो जो माँ बाप का इकराम करता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में भी आसानियां फरमा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि माँ बाप की खिदमत और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक जो है ना, इसको अल्लाह ताला ने दुनियावी रिज्क के साथ जोड़ दिया है। इसको अल्लाह ताला ने दुनियावी रिज्क के साथ जोड़ दिया है, और उस्ताद और शेख का जो इकराम करता है, उसको अल्लाह ताला ने, यानी उस्ताद और शेख का इकराम को अल्लाह ताला ने रूहानी रिज्क के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो इल्म की दौलत जिसको मिलती है जो अपने उस्ताद का इकराम करता है, और तकवा की दौलत उसको मिलती है कि जो कि अपने शेख का इकराम करता है, और दुनिया का रिस्क उसको मिलता है जो कि अपने सलबी वालदेन का इकराम करता है। उस्ताद इल्मी वालिद होता है, शेख रूहानी वालिद होता है, और ये माँ बाप जो हैं ये बायोलॉजिकल सलबी वालिदैन होते हैं। तो जिसका जैसा ताल्लुक है वैसे ही उसके बदले में अजर मिल रहा होता है, फायदा मिल रहा होता है। ठीक है, तो वालिदैन के साथ जो है ना, फिर यानी बहुत एहतियात से रहना चाहिए। और इवन इवन अगर कोई दीनी इख्तलाफ भी है, जो कि आगे हजरत ने फिर उसका ना आगे बल्कि एक टॉपिक के बाद ही इंशाल्लाह अगली क्लास में उसको पढ़ेंगे, तो वो बात फिर से आ रही है कि भाई वालदैन जो है वो अगर दीन में आपके लिए रुकावटें भी पैदा कर रहे हैं, मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं ना, फिर भी उनके साथ जो है ना वो दूबदू फाइटिंग नहीं कर सकते, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, उनके साथ जो है ना वो यानी जिसको कहते हैं ना अगर लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना, हम लड़ पड़ते हैं क्योंकि यानी उस किस्म की तरबियत और उस किस्म की तालीम तो नहीं दी जाती है, तो दीनदार बनते हैं यानी कुछ जो है वो ऊपर से हाल वाल तब्दील कर ली, लिबास वबास तब्दील कर लिया, कुछ जो है वो बातें शुरू कर दी, तो जाहिर वालदेन को कहाँ से हजम होगा ये सब कुछ, है ना, पूरी जिंदगी उन्होंने एक एक अपने नहज के ऊपर परवान चढ़ाया और उधर जो है ना ये साहब किसी पीर साहब के पास जाकर के जो है वो बदल करके आ गए, तो उनसे कैसे हजम होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो फिर वो रुकावट डालते हैं, फिर वो जो है वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत अजीब अजीब किस्म किस्म के हालात देखने को मिलते हैं, तो फिर वो औलाद जो है ना वो फिर उनसे फाइटिंग शुरू कर देती है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, नहीं बल्कि बर्दाश्त करना है, सब्र करना है और उनके साथ जो है ना वो हुस्न सलूक का दामन हाथ से नहीं छोड़ने देना है। अल्लाह ताला हम सबको बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।